कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर।
गीता बोलने वाला ब्रह्म कहता है कि दुर्गा तो मेरी प्रकृति, तो मेरी पत्नी है, सब्जियों को उत्पन्न करने वाली माता है, मैं इसके गर्भ में बीज स्थापन करने वाला सबका पिता हूं। प्रकृति से उत्पन्न ये तीनों गुण इस जीव को कर्मानुसार यहां बांधे रखते हैं, जकड़े रखते हैं। तीनों गुण कौन से? सिद्ध होगी रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तम गुण शिव जी। ये देखिएगा अध्याय 14 और सुनाता हूं आपको, ताजा ताजा है, जल्दी समझ में आ जाएगा। ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 14 का और श्लोक नंबर 3 में, हे अर्जुन मेरी महत माने प्रधान ब्रह्म, मेरी महत रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि अर्थात गर्भाधान स्थान है, मैं उस योनि में चेतन यानी गर्भ को स्थापन करने वाला तत्व करता हूं, उसके संयोग से जड़ इतने से नहीं सब भूतों की सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। चार में क्या कहा है, हे अर्जुन नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति दुर्गा, प्रकृति यानी दुर्गा उन सब की गर्भधारण करने वाली माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूं। और पांचवें में क्या कहा है, हे अर्जुन सतगुण रजगुण और तमगुण ये प्रकृति से उत्पन्न, दुर्गा से उत्पन्न ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु ब्रह्मा महेश तीनों गुण ये तीनों देवता अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधते हैं। अब इसने काल ने हमें मूर्ख बनाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश के सिर ठेकरा फोड़ दिया कि ये तीनों देवता ही सबको यहां फंसा कर रखते हैं। परमात्मा ने आकर बताया ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और ये धर्म राया, कहिए इन पांचों मिल परपंच बनाया, वाणी हमरी लइए। ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और काल ने इन पांचों ने मिल कहिए परपंच रच रखा है। हमारी बात को गहराई से सोचियो बच्चों, परमात्मा ने कहा। अब ये सिद्ध हो ही रहा है, ये पांचों मिलकर जकड़े बैठे हमारे को, इन पांचों मिल जीव अटकाए, युगन युगन हम आयन छुटाए, बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। यहां पवित्र शिव प्राण को हमने फिर उठा लिया, श्रीमद् भगवत गीता को रख दिया, उसमें से इतना ही लेना था। अब देखिएगा ये संक्षिप्त शिवपुराण हम पढ़ रहे हैं और 100 पृष्ठ पे पढ़ रहे थे, यहां आगे थे हम, कि जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव हैं, अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं के ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को अपने विग्रह माने शरीर से निकाली दुर्गा को ये खुद मान रहे हैं। पुण्यात्मा परमात्मा आए थे, ब्रह्मा जी को मिले, विष्णु जी को मिले, शिव जी को मिले। पहली बार तो इन्होंने ज्ञान सुना डंगता है। परमात्मा ने सबसे पहले ब्रह्मा को सृष्टि रचना आदि सुनाई थी, पहले उसने ठीक माना, बाद में काल ने उसके अंदर प्रवेश करके बुद्धि भ्रष्ट कर दी कि ये झूठ बोलता है, मन गणत कहानियां हैं, वेद सर्वश्रेष्ठ है, इसके अतिरिक्त कोई बात मत मानो। तो इस ब्रह्मा जी ने कुछ तो परमात्मा से प्राप्त ज्ञान और कुछ फिर अपने अज्ञान के आधार से ये ज्ञान सुनाना चाहा, तो फिर भी सच्चाई छुपी नहीं। ये क्या कहना चाहते हैं कि सदाशिव पहले निराकार था फिर सदाशिव बन गया, उसने अपने शरीर से एक शक्ति निकाल ली, वह प्रकृति कलाई, उसी को जगदम्बिका कहते हैं, तीनों देव की जननी ब्रह्मा विष्णु महेश की माता और उसकी आठ भुजाएं। यहां कर दिया ना डंगा इसने। और परमात्मा ने पहले ही बता रखा है कि जैसे दास ने सृष्टि रचना में आपको बहुत बार सुनाया है, उसमें आप खूब समझ चुके होंगे, तो उसी का कुछ अंश लेकर इसने यहां मिलावट की है। देखिएगा, उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी विकार रहित बताया गया। वह शक्ति अंबिका दुर्गा कही गई है, उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी नित्य मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की आठ भुजाएं होगी, क्लियर। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंग की शोभा बढ़ाते हैं, श्री अंगों की। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव है, अब ये डेफिनेशन है उस काल की, ब्रह्मा जी बता रहे हैं और अपने सदग्रंथों में लिखा है, देखिएगा। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभू और महेश्वर कहते हैं। यहां देखना, वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय में शक्ति के साथ दुर्गा के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वह प्रिय और प्रियतम रूप, पति पत्नी रूप में शक्ति और शिव, दुर्गा और ये काल, ये स्पष्ट कह दिया। वो काल रूपी ब्रह्म ने, यो काल कहो, ब्रह्म कहो, काल रूपी ब्रह्म कहो, सदाशिव कहो, ये ब्रह्म है। शक्ति और शिव ने, दुर्गा और काल ने, वे प्रिय और प्रियतम रूप यानी पति पत्नी रूप में शक्ति यानी दुर्गा और शिव जो परमानंद स्वरूप है उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। मुने शिव और शिवा ने, काल और दुर्गा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। देवऋषि एक समय आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। अभी इन्होंने सोचा कि कोई पुत्र उत्पन्न करते हैं, उसको ये सारा काम संभलवा देंगे, हम निर्वाण धारण करेंगे, एकांत में रहा करेंगे। ये देखिए, ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के दसवें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, यानी पति पत्नी व्यवहार किया, वहां से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम के रख्या। 102 पृष्ठ पे संक्षिप्त शिव पुराण, 102 पृष्ठ पे शिव ने कहा वत्स, उस काल ने कहा बेटा व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ, विष्णु धर गया तेरा नाम। अब फिर हम यहां आते हैं, ये हमने छठा अध्याय पढ़ लिया रुद्र संहिता का सातवां, ये सातवां अध्याय 103 पृष्ठ पे। ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर साम सदाशिव ने, काल ने पूर्ववत प्रयत्न करके जैसे अपनी दुर्गा से विष्णु की उत्पत्ति की, मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। बस बात खत्म। अब यहां समस्या आ गई अनुवादकर्ता ने, क्योंकि इनको ज्ञान तो था नहीं, इनके उद्देश्य फिर इसको सब उलट सुलट करना ही था। अब इसको समस्या पैदा होगी कि शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे बताऊं। अनुवादकर्ता ने गोल बोल कर दिया, कहते हैं चोर चुरावे तूंबड़ी और गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ उपराव ने सच्चाई छानी ना। अब यहां आपको हम विद्वेश्वर संहिता इसी शिव पुराण के अंदर एक अध्याय है, उसमें दिखाते हैं कि एक समय ब्रह्मा और विष्णु का झगड़ा हो गया। ब्रह्मा जी बोला मैं तेरा बाप विष्णु जी को, विष्णु जी बोले मैं तेरा पिता, तू मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी कहने लगे मैं सारी सृष्टि का पिता, मैं प्रजा पिता हूं। इन सूखी फीत ला रहे थे भाई, इन दोनों का युद्ध हो गया इससे बात पे। तो इस काल ने सोचा है लड़के मरेंगे और मैंने इनसे सृष्टि रचवानी अपने खाने के लिए। इनके बीच में एक सतम एक लिंग खड़ा कर दिया सफेद तेजो में, बहुत बहुत विस्तार, जिसकी ओर छोर भी इन दोनों को नहीं पाया। तो लंबा कथा ना बना के तो आपने खूब पढ़ रखी है, हम अपने मतलब की सुनेंगे। तो उसी समय ये खुद भी वहां अपने पुत्र शिव के रूप में, सदाशिव रूप में आकर खड़ा हो गया। फिर इनको लग गया ज्ञान समझाने। देखिएगा ये है, ब्रह्मा विष्णु लड़े थे, इनके बीच में सतम्भ खड़ा कर दिया। संक्षिप्त शिवपुराण 24 पृष्ठ पे गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, सचित्र मोटा टाइप के। और ये विद्वेश्वर संहिता 25 पृष्ठ पे, यहां से थोड़ा सा हम लिंक लेंगे इसका। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा प्रभो सृष्टि आदि पांच कर्तों के लक्षण क्या हैं, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, युकाल बोला मेरे कर्तों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बताता हूं। अब हम ज्यादा ना पढ़े, ये देखिएगा अब 26 पे क्या लिखा है। पुत्रो, काल कहता ब्रह्मा और विष्णु को, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीची नामक दो कृत प्राप्त किए हैं, ये तुम दोनों को बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, युमे नहीं है ने दो अन्य उत्तम कृत सहार और त्रिभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। सिद्ध जो दास करना चाहता था, दो पुत्र तो ये हो गए इसके, ब्रह्मा और विष्णु जो वहां कति क्लियर हो गया, इनका जन्म हुआ दुर्गा से, अन्यों का दो और है मेरे बेटे रुद्र और महेश्वर, तो हो गए चार। और पांचवा बोल रहे अब और थोड़ा सा क्लियर करते हैं। हाँ यहां एक थोड़ा सा और रह गया, इसे और अच्छा क्लियर हो जाएगा। यू कौन, अब यहां 26 पर हम पढ़ ही रहे थे यही, देखिएगा अब 26 पर हम पढ़ रहे थे यही इसके विद्वेश्वर संहिता का, यहां पर हम पढ़ रहे थे नीचे पुत्रो। यहां फिर इसका और थोड़ा सा लिंक है, ये क्या कहता है, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूपभूत मंत्र का उपदेश किया है जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है, वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ जो मेरे स्वरूप का बोधक करने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूं, यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही यानी काल का ही स्मरण सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का और मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार पांच अवयव से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयव से एकीभूत होकर यह प्रणव यानी एक ओम अक्षर हो गया। अपने आत्माओं इन सदग्रंथों का दूध सा काट दिया कति दास ने परमात्मा की कृपा से। अब ये सिद्ध हो गया कि ये जो ओम मंत्र है ओम मंत्र है जिसका जो ब्रह्म का है और ये उनको समझा रहा है ये इनका पिता है ब्रह्मा विष्णु में इसका ये सदाशिव है इसको काल रूपी ब्रह्म भी सदग्रंथों में भी कहा है परमेश्वर ने भी कहा है। अब श्रीमद भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में भी गीता यही ज्ञान दे रहा है और कह रहा है मेरा एक ओम मंत्र है। ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 8 का गीता अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 13 आपको दिखाते हैं अध्याय 8 श्रीमद भगवद गीता अध्याय 8 और मंत्र नंबर 13 ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का ओम ओम यह एक अक्षर मंत्र है एक अक्षरम नथिंग एल्स विहरण अनुसमरण उच्चारण करके सुमन करता हुआ यह प्रयाति तजन देहम जो शरीर छोड़कर जाता है सयाति परमाम गति जो ओम से मिलने वाली परम गति है उसको प्राप्त होता है। ओम अर्थ इन्होंने ये ओम किया जो पुरुष ओम ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता है एक अक्षर रूप ब्रह्म कहेंगे ये तीनों कहें मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है इसका उच्चारण करता हो जो शरीर छोड़कर जाता हो ब्रह्म से होने वाली जो मोक्ष है उसको प्राप्त करता हूं। ब्रह्म से कौन सी उपलब्धि है ब्रह्म से उपलब्धि है ब्रह्मलोक। अब ये देखिएगा 16वां श्लोक है 8वें अध्याय का हे अर्जुन ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में है यानी ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी इन दोबारा जन्म मृत्यु में आते हैं। पुनरावृत्ति का इन्होंने विश्लेषण भी किया अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े यानी ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म आते यहां इन्होंने अनुवाद थोड़ा सा गलत किया है कि हे कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। देख बिना दिमाग की बात इनकी विद ते का अर्थ विद धातु से बना है विद माने जानना भी है जो ये नहीं जानते कि मुझे प्राप्त होकर भी ब्रह्मलोक जाकर भी जन्म मृत्यु होते हैं तो मेरी भक्ति करके भी उनकी पुनर्जन्म होता है जो ये नहीं जानते उनका पुनर्जन्म होता है। अर्जुन जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं तो उनका वो मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म है अर्जुन उनका पुनर्जन्म है इसका ये अर्थ है। यदि हम इनका ये अनुवाद सच्चा माने तो अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर 12 अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर 12 और अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 5 और 9 अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 ये कति गलत हो जाते हैं। देखिएगा श्रीमद भगवद गीता अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 12 न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था गीता ज्ञानदाता कह रहा ये ब्रह्म अथवा तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे और न ऐसा ही है कि इसे आगे हम सब नहीं रहेंगे। इसके साथ ही देखना है इसी दूसरे अध्याय का 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया है कि अविनाशी तो उसको जान जिससे अविनाशी यानी नाश नहीं कहो अविनाशी को अविनाशी तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है और इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है यानी गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य है जो वास्तव में अविनाशी है जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है और वही रोके हुए। अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में ये देखिएगा ये है अध्याय नंबर 4 श्रीमद् भगवद गीता इसका यहां ये 5वां मंत्र यहां से स्टार्ट है लेकिन इसका अनुवाद यहां पर है हे परंतम अर्जुन मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं इति सिद्धम गीता ज्ञानदाता भी जन्म मरता है अविनाशी नहीं है ये तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं उन सबको तू नहीं जानता मैं जानता हूं। और 9वें श्लोक में क्या कहा है अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 9 में मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं दिव्य हैं। अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में, अध्याय नंबर 10 और श्लोक नंबर 2 में मेरी उत्पत्ति को, मेरे जन्म को न देवता लोग जानते हैं न महर्षि जन जानते, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि कारण यानी इनका जन्मदाता हूं। यदि गीतानुवादकों का 8वें अध्याय के 16वें श्लोक का ये अनुवाद सत्य माने कि ब्रह्म लोक में गए सब प्राणी पुनरावृत्ति में हैं और मुझे प्राप्त होकर फिर दिन मृत्यु नहीं होती, तो ये तीनों श्लोक गलत हो जाते हैं तीनों के तीन। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन जो ये नहीं जानते कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में हैं, उनका पुनर्जन्म, अर्जुन उनका पुनर्जन्म होता ही होता है। अब प्रसंग चल रहा है कि ओम नाम से कौन सी उपलब्धि होती है वो ब्रह्म लोक में जाते हैं। देखिए श्रीमद् भगवत गीता, वही गीता प्रेस गुरुपुर से प्रकाशित है, इसमें आपको दिखाते हैं 562 पृष्ठ पे। एक बार हिमालय राजा को देवी जी ज्ञान उपदेश कर रही है और ब्रह्म के बारे में जानकारी दे रही है। देखिएगा 562 पृष्ठ संक्षिप्त देवी भागवत और ये 7वां स्कंद, यहां हम आ जाते हैं। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञान उपदेश, देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी पर्वतराज उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। पहले तो अपने बारे में बताती है, मेरी भक्ति कर तो ऐसे ऐसे कर, लेकिन वो कहती है ये भी ठीक नहीं है। उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबसे के अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है, महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह परम सत्य, यह काफी लंबा है लेकिन थोड़ा बताएंगे, वह है परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है सौम्य। उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष को लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किए हुआ बाण संधान करो और फिर भावनागुत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता है, यानी जीवात्मा को ओम का जाप करके ब्रह्म के पाने का ही प्रयत्न करना चाहिए। इसका सिद्ध, ये सिद्ध है। उस एकमात्र परमात्मा ही को जानो, दूसरी सब बातों को छोड़ दो। देवी कहती है मेरी पूजा भी मत करना, केवल उस ब्रह्म की पूजा करो, केवल ब्रह्म की पूजा करो। उस एकमात्र परमात्मा ही को जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे, यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार रूपी समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का, इस परमात्मा का ओम के जप से के साथ ध्यान करो, ओम का जाप करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नाम का जाप करो और ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे। वो ब्रह्म कहां रहता है? वह है, यह सबका आत्मा ब्रह्म। ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, ब्रह्म लोक में रहता है। यानी ब्रह्म का साधक, ब्रह्म का साधक ओम नाम का जाप करने वाला ब्रह्म लोक में जाता है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में क्लियर कर दिया है कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में। और अब ये गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, ये क्या कहता है? अब गीता ज्ञान दाता कहता है कि अर्जुन उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो अपने मुख कमल से ज्ञान बोला, वो वास्तविक ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान है। उसमें विस्तार के साथ उस परम पिता के पाने की जानकारी है, उसको तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। चौथे अध्याय के 32 और 34 श्लोक में, 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 का सारांश है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष है पीपल का वृक्ष, समझो ऊपर को जड़ नीचे को तीन गुण रूपी शाखा है, और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की सभी टहनियों समेत बता देगा, सब विभाग बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है, वह वेदवित है। परमेश्वर ने यह लीला स्वयं की हुई है, अपने मुखारविंद से बोली, अमृतवाणी सचिदानंद गणब्रह्म की वाणी कबीर वाणी में लिखा है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार, निरंजन कहो सरपुरुष कहो, और तीनों देवा शाखा है ये पात्र संसार। 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा कि जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जावे उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है केवल उसकी भक्ति करो और सब बातें त्याग दे। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति को सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई और परम शक्ति है, और गीता ज्ञान दाता भी जन्म मृत्यु के अंदर आता है, और ब्रह्म का उपासक ब्रह्म लोक में जाता है, और ब्रह्म से यही एक परम गति होती है, ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है। अब हम आते हैं उसी प्रसंग पर जो आज दास आगे बढ़ाना चाह रहा है। तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति, इन तीनों देवताओं की जो भक्ति करते हैं उनकी कभी मोक्ष नहीं होता। तीन देवता रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, स्पष्ट हुआ अभी प्रमाण दिया था कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, मार्कंडेय पुराण प्रश्न नंबर 123 से, और खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन के प्रकाशित देवी भागवत के 5वें अध्याय का 8वें श्लोक में वो स्पष्ट कर दिया। शंकर जी कहते हैं, माता आपने हमें क्यों तमोगुण बना दिया, ब्रह्मा जी को रजोगुण और विष्णु जी को सतोगुण क्यों बनाया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। अब हम गीता अध्याय नंबर 7 को फिर पढ़ेंगे। देखिए अब हमने यहां तक पढ़ लिया इसको, अब ये क्या कह रहे हैं कि देखिएगा अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 2, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को पूर्णतः कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। फिर ये तीसरे में बता दिया है कि हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी एक मान सिद्ध है, मान भगवान प्राप्ति के लिए हजारों को एक आधा कोशिश कर रहा है भगवान पाने की, ना केवल तो फॉर्मेलिटी करते हैं, और यत्न करने वालों में भी कोई एकाधा ही मुझ तक पहुंचता है, इसका ये अर्थ है कहने का। और जो मुझे तत्व से जानता है, अब प्रमाण है जैसे दास बहुत बार सत्संग में सुनाता है कि ये स्वर्ग का राजा इंद्र एक बार मार्कंडेय ऋषि तपस्या कर रहे थे, उसने अपनी पत्नी भेज दी और फिर भी वो टस से मस नहीं हुए, फिर स्वयं इंद्र पहुंच गया कि ले मार्कंडेय जी तुम इंद्र का राज ग्रहण करो, हम हार गए तुम जीत गए। लेकिन मार्कंडेय ऋषि ने कहा था कि मुझे तेरे इंद्र की राज की आवश्यकता नहीं, मैं तो ऐसे स्थान पर समाधि लगा रहा हूं ब्रह्म लोक में, और इंद्र को कहने लगा कि आजा तुझे ब्रह्म लोक का सैल करा दूं, वो ज्ञान बता दूं, त्याग दे इस इंद्र के राज को। वो केवल इसी ब्रह्म को ही तत्व से जानता था, इस ब्रह्म को ही फाइनल मान रहा था कि यह पूर्ण परमात्मा है मार्कंडेय ऋषि, तो उसने वही सेटिंग थी। तो ये कहना चाहता है कि जो मुझे तत्व मुझे ही फाइनल मान रहा है तो मेरी भक्ति करता है, वो भी हजारों में कोई एक आधा नहीं, तो नीचे के देवी देवताओं तक सीमित है लोग। ये सारा इस 7वें अध्याय का ये निष्कर्ष समझ लेना। फिर आगे देखिएगा इसी 7वें अध्याय का ये 4वां और 5वां श्लोक आपको बता, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार भी इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित, मेरी प्रकृति यह तो जड़ प्रकृति है, अपरा और हे महाभाव, इसे दूसरी जिसे सारा संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी चेतन प्रकृति जीव रूपा, ये चेतन प्रकृति समझो। अब छठे में कहा है, ऐसा समझकर संपूर्ण भूत सभी प्राणी इन दोनों प्रकृतियों से मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव अर्थात प्रलय का कारण हूं, इनका जन्म और इस सब का मैं ही कारण हूं। अब हम यहां आ जाते हैं, अब हम ज्यादा ना पढ़े, सो देख सातवें में क्या कहा कि अर्जुन मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल हूं, संपूर्ण प्राणियों का सनातन बीज मुझको जान, और बुद्धिमानों में बुद्धि तेजों का तेज मैं ही हूं। और ग्यारहवें में क्या कहा है कि हे भरत श्रेष्ठ मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूं। कहने का भाव ये है कि मैं बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि इनकी मेरे हाथ में है। जैसे महाभारत के अंदर अर्जुन को बल दे दिया, ना जाने कितनी हत्या कर डाली, और जब श्री कृष्ण जी का वध कर दिया एक शिकारी ने, और सारे यादव लड़का मर गए कटके जमुना के किनारे पे, तो फिर अर्जुन सभी गोपियों को लेकर आ रहा था द्वारका की सभी स्त्रियों को कृष्ण जी के आदेश अनुसार। उसके पास वही धनुष था जो महाभारत में उसने करोड़ों जीव मार दिए थे, और रास्ते में भी लोनो पीटा, सारी कुछ औरतों को भी ले गए घसीट के, उनके गहने तोड़ ले गए, लूट ले गए। अर्जुन खड़ा खड़ा कांपा, उसका हाथ नहीं उठा। तो जब वो जालिए, जब उसकी बुद्धि ने काम किया कि कृष्ण ने हमारे साथ सदा धोखा ही धोखा दिया, जब मुझसे नाश कराना था महाभारत में जब तो ताकत दे दी, ना जाने कितने जीव मार दिए मैंने कति उछड़ उछड़ के, और आज मैं खड़ा खड़ा पिट रहा हूं, मेरे हाथ भी ना उठते। तो यहां परमात्मा कहता है तुमने नंबर गलत मिला रखा है, तुम श्री कृष्ण को दोष दे रहे हो, श्री कृष्ण दोषी नहीं था, ये काल है सारा जड़, इस बीमारी की जड़ ये काल है, ये करवा रहा है। ये खुद कहता है बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल मैं हूं। श्री रामचंद्र जी की सीता उठी विष्णु जी की, अब उसने खुद नहीं मालूम सीता ने कौन ठा ले गया, बुद्धि ऑफ कर दी। जब पार्वती ने यह कहा शंकर जी से कि मैं इसकी परीक्षा लूंगी, आपको जो विष्णु जी है भगवान है, वह परीक्षा लेने आई सीता रूप बनाकर, जब उसकी बुद्धि ऑन कर दी काल ने और तुरंत पहचान दी कि तो आप तो दक्ष पुत्री माया हो, और अपनी पत्नी का पता नहीं कौन ठा ले गया, उसने तो हनुमान जैसे चारों तरफ घूम कर ढूंढ कर लाए और उधर पार्वती पहचान ली। तो कहते बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूं। अब ये है निष्कर्ष इस गीता जी के ज्ञान का, ये मारा करते सट्टे गीता जी का सार, तू क्या लाया था, तू अजन्मा है, जीव तो मरता ही नहीं, बस ये सार है, खाक सार था यो। अब सातवें अध्याय का हम आपको बारहवां श्लोक सुनाते हैं, समझाते हैं। गीता अध्याय नंबर सात का श्लोक नंबर बारह में कहा कि और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। अब ये क्या कहता है कि जो भी हो रहा है रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सब जीव विवश हैं संतानोत्पत्ति करने के, इनके वश की बात नहीं। और दूसरा सतोगुण यानी विष्णु जी के सतोगुण से, विष्णु जी के कारण सब आपस में मोह ममता में जकड़े पड़े हैं, ये जो हो रहा है। और तीसरा संहार तमोगुण से शंकर जी से, ये कहता है इसका नियमित मूल कारण मैं ही हूं, पर मैं इनसे बाहर रहता हूं। अब आपको कुछ भक्तों के यहां जो मालिक ने रहम बख्शे हैं वो सुना करो, आपकी आत्मा गदगद होगी, आपको विश्वास होगा। यहां कोई किसी को मजबूर नहीं, सब इच्छा से अपना इंटरव्यू देते हैं, और आधी बात तो कहने बिना मिलते कैमरे के सामने आके इतने सुख दे रखे उनको। अब सुनिएगा उनके अनुभव।
नमस्कार सर।
नमस्ते।
क्या शुभ नाम है जी आप जी का?
रमेश दास जी।
सर कहाँ से आए आप?
मैं नासिक पीपल गांव से आया हूँ।
सर क्या काम करते हैं?
मैं केबल ऑपरेटर हूँ।
सर ब्रह्मचंद सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे?
मैं सभी देवताओं की पूजा करता था, जहां मंदिर था राम का पूजा करता था, श्री राम की, श्री कृष्ण जी की, गणपति जी की, जहां जहां मंदिर था जहां जहां जाता वह भक्ति करता था। मगर मैंने गुरु नहीं बना लिए थे, मैं परेशान था कि मैं जहां जहां जाता था वहां से परेशान था कि सब लोग जाके देखता था कि वहां पे पैसे के भूखे थे और मुझे बहुत कोई लाभ नहीं मिलता था। मैं वहां ढूंढता था, मैं हमारे महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर बहुत सारे संत है, सभी मैं जाके गया। वहां से हमारे नजदीक नासिक में गोदावरी है, यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर का जो बड़ा मंदिर है वहां पे वे जाके देख लिया। यहाँ से आळंदी वे संत ज्ञानेश्वर की समाधि वहां पे जाके लिया, वहां पे वे हमने संत ज्ञानेश्वरी का पारायण किया, खुद हमने भगवदगीता के भी पारायण किया। कुछ लाभ नहीं मिलता था, बहुत परेशान थे हम कि भगवान कहाँ है, कैसा है, कैसे मिलता है, ऐसे भी हम भटक भटकते रहते थे। ऐसे भी हमारे एक दिन हमारी मुलाकात हमारे जो मित्र थे वो जो अमरीश नेरकर वहां से वो हमारे गुरु बन गए थे। तो गुरु बनने के बाद उसने हमें एक मंत्र दिया था कि ओम नमः भगवते वासुदेवाय, हम उसका जाप करते थे। तो जाप करने से हम ध्यान लगाते थे, ध्यान लगाने के बाद हमें बहुत शांति मिलती थी, बाद में आंख खुलने के बाद हमें कुछ नहीं मिलता था।
सर परमचंद सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए?
पूर्व संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए हम, जो आस्था चैनल पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चलता था और वो सत्संग हम देखते थे तो कुछ समझ में नहीं आता था, तो हमने वो सब उसको रिकॉर्डिंग की और उसको दिन भर हमारे जो दोस्त थे वो हम देखते रहते थे। तो बोले यो कुछ अलग है, हम कुछ अलग भक्ति कर रहे, हम ये गुरु जी जो बता रहे हो अलग भक्ति कर रहे था, हमें इस पे विश्वास नहीं था। तो गुरु जी जो बताते वेद जो गीता जो पुराण वो हम देखते थे, हम सब वो लेके आए, इसमें जो लिखा था वही हमने देखा, तो हमें लगा हम बहुत गलत भक्ति कर रहे हैं और गलत जगह पे गलत राह पर चल रहे, ये तो बहुत कुछ अलग है। जो हमारे जो दोस्त थे अमरीश नेरकर बोले हम एक बार गुरु जी से मिलेंगे पता चलेंगे। बाद में गुरु जी पुणे में आ गए और हम वहां पे चले गए। वहां से चलने के बाद उसने बोला कि आज से जो भी कुछ हम पूजा कर रहे थे वो सब बंद कर दो और जो गुरु जी ने बताया है वही हम भक्ति करेंगे। तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे भक्ति करेंगे, क्या होता है क्या नहीं। तो एक बार नासिक में 2004 में गुरु जी नासिक में आ गए तो हम वहां पे चले गए। वहां चलने के बाद हमने पूरा 3 दिन का सत्संग सुना और वहां से हमने नाम लिया, तो हमारा पूरा परिवार था इसमें जुड़ गया। वहां से हम 2004 में पूरा परिवार ने हमने नाम ले लिया।
सर परम संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला?
2004 से हमें इतना लाभ मिला, लाभ तो इतने मिले कि जब से हमने नाम लेने के बाद हमारे घर में इतने सुख हो गए, तो हमें कभी ऐसा महसूस भी नहीं हो रहा है कि हम छोटे से फैमिली से, हमारा खेती है, अंगूर का खेती पिकाते हम, तो खेती भी हमारी बहुत छोटी है मगर छोटे खेती से अंगूर से हम बहुत सारा पैसा कमा लेते, दो दो तीन तीन चार लाख रुपए हम हर साल कमा लेते। आजू बाजू के लोग बोलते हैं कि आप इतना पैसा कहाँ से आते, तो सब लोग बोलते, आजू बाजू के लोग हम लोगों को बोलते हैं कि हमने गुरु बना लिए, वो गुरु पूर्ण संत है, वो शास्त्र के वहां से नाम देते और पूर्ण संत है, वहां से आप अगर नाम लेंगे तो आपकी भी ऐसी प्रगति हो जाएंगी। तो सब बोलते नहीं हे तुम बोलते हो गलत बोलते, सब भगवान को छोड़ना पड़ता है, ये धर्म बदलने का बोलता है, ऐसा हमें बहुत परेशानी हो गई। हम उसमें डटते रहे, नाम गुरु जी का नाम हम जापते रह गए, आज तक हमें कोई परेशानी हुई नहीं। लाभ तो हर पूछो मत, बहुत लाभ हो गए। गुरु जी हो तो हम उनको बताते कि हमारे जो गुरु जी है ना वो धर्म बदलते ना बदलने को कहते, जो भगवान है उन्हीं को पूजा करने को कहते, जैसा उनका मंत्र दिया हुआ है जो तो शास्त्र में है, जो वेदों में है, गीता में है, वो मंत्र हमें देते थे, वो मंत्र से हमें लाभ मिलता था। ना कोई धर्म बदलना है, ना कोई क्रिश्चियन बनाना, ना मुसलमानाना, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा ही वो मंत्र देते है कि जो हम उसका जाप करके हमें बहुत उसका लाभ मिलता था। और ऐसे करते करते आज हमारे पीपल गांव में बहुत सारे लोग हमसे जुड़ गए। वो बोलते आप कहाँ जाते हैं, हमें वहां भी आने का है। हम बोलते वहां पे आने आ जाओ, सत्संग सुनो, हमारे गुरुजी जो कुछ नाम देते उसकी भक्ति करो और आपकी भी बहुत प्रगति हो जाएगी, आपको भी बहुत लाभ हो जाएगा इसमें से। तो आज हमने पीपल गांव से बहुत सारे लोग इसमें जुड़ गए और हमें बहुत खुशी होती है कि रामपाल जी महाराज की कृपा से हम इतने सारे सुख दिए हैं कि हम उसको बयान भी नहीं कर सकते। आज हमारे पास एक दो दो तीन तीन गाड़ियां है, हम दो भाई है, हमारा परिवार छोटा सा है मगर सब खुश है। आज कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। हम आजू बाजू के लोग हमें देखते हैं कि है, जाते हैं हरियाणा में और वहां पे तीन तीन आठ दिन दिन आठ आठ दिन दिन तीन तीन दिन वहां पे रह के सत्संग सुनने के बाद वहां पे आते हैं। वो बहुत कूल भी रहते हैं, वो आने के बाद उनकी बहुत और भी प्रगति हो जाती है। तो देख के बोलते हैं अब नेम के वहां पे जाके क्या करते थे। हमने सुना है कि वहां पे जाने के बाद लोग कहते हैं कि टीवी पे देखा है कि ऐसा हुआ तैसा हुआ। एक बार कोरोना कांड में ऐसा हुआ कि आश्रम जी बापू के मासिक में लेख लिखा हुआ था, तो हमारे घर में आके वो पुस्तक फेंक दिए, देखो तुम्हारे गुरु जी के बारे में क्या क्या लिखा है, वो सब सच है। हम बोले ये सब गलत है, वो ऐसा कुछ नहीं है, हम वहां पे थे कोरोना कांड में, ये सब झूठ है, हमें हमारे गुरु जी को फंसाया गया है। ये सब आजू बाजू के लोगों ने मिलके वहां पे फंसा दिया है, तो हम उनको बोलते थे। मगर आज धीरे धीरे हम पुस्तकों की सेवा करते, घर पर भी जाके बताते हैं कि देखो ये हमारा ज्ञानगंगा पुस्तक है, इनमें से दिया हुआ है, सब देवताओं की यही पूजा करते, ना किसी धर्म को छोड़ना है, ना किसी भगवान को छोड़ना है, उसको बस उसकी पूजा करना है, उसको विधि करना है, उसकी भक्ति करना है, ना कोई उसको छोड़ना है, ना कोई उसको फेंक देना है। तो वही हम वो बताते हैं उनको।
परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको बहुत लाभ मिला। पहले आपका जीवन बहुत ही दुखी था, कष्ट में था, तो सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको यथार्थ भक्ति मिली, उस भक्ति से आपको मुक्ति भी मिल सकती है, आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधर गई है। तो भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप?
मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप नकली गुरु में फंसे हुए, उनके पास कुछ ज्ञान नहीं है, ना कोई वो खुद, उनको भी खुद ज्ञान नहीं है और उनको भी कुछ भक्तों को ज्ञान देते है, वो सब पैसे के भूखेले, वो आपको फंसा रहे और आपका जीवन व्यर्थ व्यर्थ पे जा रहा है। और आप यहाँ पे आइए बरवाला हिसार में आश्रम में, सतलोक आश्रम में, और आपका कल्याण करवाइए।
जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत।
परमात्मा ने बताया था कि इस काल को 100,000 मानव शरीरधारी प्राणी नित खाने का श्राप लगा हुआ, जिस कारण से ये अपने तीनों पुत्रों को इसने गुणयुक्त कर दिया, एक एक गुणयुक्त। अब इनके बस की बात नहीं, इन गुणों को ये ना रोक सके। जैसे मिर्च में गुण बना दिया मुंह जलने का, तो वो चरचराट उसका गुण है, तो मिर्च के बस का कोई ना, उसने गुण खत्म कर लिए। तो इसी प्रकार इस काल ने इनको एक एक गुणयुक्त कर दिया। अब ये क्या कहता है कि इन से जो कुछ हो रहा है इसका निमित्त कारण मैं ही हूं, मैं ही करता करवाता हूं, मैं खाता हूं, ये पैदा करें, मोह ममता से जकड़े रखकर मार दें। आगे देखो 13वें श्लोक में क्या कहा है, 7वें अध्याय का 13वां श्लोक। गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भाव से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जाता। अब ये कहते हैं कि सभी इन ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भक्ति में जकड़े पड़े हैं, इनसे ऊपर मैं हूं ब्रह्म, ये मुझे भी ना जानते। देखिए 7वें अध्याय का 14वां श्लोक, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमय मेरी माया रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है, और जो पुरुष मुझको निरंतर बजते हैं यानी ब्रह्म की साधना करते हैं ओम नाम का, वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश को ओवरलैप कर जाते हैं, जंप कर जाते हैं, इनसे अधिक राहत मिलती है उससे। आगे देखो 15वें में क्या कहा है, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी तक की जो बुद्धि, जिनकी बुद्धि वहीं तक सेट है, इनसे आगे कोई सुनना भी नहीं चाहते, वो आसुर स्वभाव यानी राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच नराधम नराधमा मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मूढ़ लोग मूर्ख लोग मुझको नहीं भजते। अब दास आपको सुनाएगा थोड़ा सा मौखिक था। अब इसमें ये क्यों कहा है कि तीनों गुणों के पुजारियों को राक्षस कहा और मेरी भक्ति यानी ब्रह्म साधना भी नहीं करते, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित है, अन्य देव देवताओं तक सीमित है, इनको राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाला क्यों कहा? रजगुण ब्रह्मा जी की साधना की थी, भक्ति की थी, हिरण्यकशिपु ने अंडरस्टूड है, राक्षस कहलाया, अपने बेटे का दुश्मन बन गया और कुत्ते वाली मौत मारा गया। तमगुण शिव की भक्ति की थी रावण ने, और आपको पता उसकी कैसी गति हुई, राक्षस कहलाया। और एक भस्मागिरी नाम का शिव का पुजारी था और उसने भगवान शिव के कैलाश पर्वत पे उनके गेट के सामने 12 वर्ष तक भक्ति करी, ऊपर ने पैर नीचे ने सिर सिरासन पर। एक दिन पार्वती ने प्रार्थना की, आप तो महादेव हैं, समर्थ हैं, आपका पुजारी क्या मांगता है, दे दे इस बालक को। भगवान शिव ने कहा कि मांग, भस्मागिरी क्या मांगता है? भस्मागिरी ने कहा ऐसे नहीं, आप वचनबद्ध हो तब मांगू। भगवान शिव ने कहा कोई मांग ले, हो गया वचनबद्ध। तो उस भस्मागिरी ने कहा कि आप मुझे अपना भस्म कंडा दे दो। भगवान शिव के पास एक ऐसा कड़ा था जो आत्मा पैर कर रख्या करते, वो ऐसी सिद्धि युक्त कर रख्या था कि जिसके सिर पर न्यू कर दे भस्म, वो मर जाता था, भस्म हो जाता था। और इस बात का ज्ञान था भस्मागिरी को, ये गिरी पुरी नागा कनपाड़े नाथ ये सारे के सारे दशनामी ये शिव के पुजारी हैं, सन्यासी। तो भगवान शिव ने सोचा ले जंगल में रहता है, अपने बचाव के लिए राक्षसों से लेता होगा, निकाल कर दे दिया भोलेनाथ ने। अब जो ही भस्मागिरी के हाथ में भस्म कड़ा आ गया, उसी समय आंख बदल गया और हंसा ने ठाका मार के ले होले शंकर होशियार, तुझे मारूंगा, तुझे भस्म करूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा, मैं इसी उद्देश्य से साधना कर रहा था। अपनात्मा शंकर जी को मृत्युंजय कालज्ज अविनाशी सर्वेश्वर सबका मालिक अंतर्यामी पता नहीं क्या क्या संज्ञा दिया करते। सूक्ष्म वेद में कहा है कि यदि ये अंतर्यामी थे क्या उस दुष्ट के मन की नहीं जान सकते थे, क्या बकवाद लेकर साधना कर रहा है, अविनाशी होते तो क्यों भाग लिए उसके आगे। आगे आगे भगवान हर पीछे पीछे पुजारी दोनों जहां 100 की स्पीड पे। अब परमात्मा ने इनकी रक्षा करते हैं मालिक आकर, जब भी हृदय से पुकारते हैं आपत्ति में होते हैं, ये भी उसी के बच्चे। तो परमात्मा ने पार्वती रूप बनाया, भस्मागिरी और शंकर जी के बीच में खड़े हो गए और कहा संकेत से कि आ जाओ यहां खड़े हो जाओ। अब भस्मागिरी ने सोचा भी बिल्कुल ठीक है, कड़ा मेरे पास है, शंकर जी तो रुके नहीं अभी 100 किलोमीटर दूर है, मैं इतने दो बात कर लेता हूं। वो खड़ा हो गया। पार्वती बोली आजा ठीक है, वो तो आएंगे नहीं अब आपके पास, आप मुझे कुछ डांस करके दिखाओ ताकि मैं प्रसन्न हूं। तो वो कहने लगा मैं साधु संत तपस्वी आदमी, मेरे डांस नहीं आता। पार्वती बोली मैं सिखाऊंगा। भगवान बोले पार्वती रूप में कि चलो मैं सिखाता हूं, इस हाथ को ऐसे कर, इस पर ऐसे करो, ऐसे करो। जब ऊपर करवा लिया ना, जिस हाथ में कड़ा लिए रहा था और कह दिया भस्म, रिमोट दबा दिया उसका, भस्मा गिरी भस्म हो गया। उसके बाद वो भस्मा असुर कहलाया, भस्मा राक्षस। फिर कड़े को लेकर भगवान शिव का दिल डटा। जब उसने राख देख ली ना शंकर भगवान ने इसकी भस्मासुर की, जब दिल की धड़कन उसका पल्स रेट सेट हुआ था। ये तो इन दो गुणों के पुजारियों की दशा दिखा दी, सुना दी। अब वैष्णो जी के पुजारियों की और कथा सुनाते। एक बार कुंभ का मेला भरा था हरिद्वार में, उस समय ये सभी गिरीपुरी जितने भी ये त्रिगुण उपासक हैं अपने अपने ग्रुप में जाकर वहां इकट्ठे हो जाते हैं। पुरियों में पुरी, गिरियों में गिरी, नाथों में नाथ, अगड़ों में अगड़, नागाओं में नागा, वैष्णो में वैष्णो। और जो नहाने का इन समय निर्धारित करते हैं, हरकी पैड़ी के ऊपर वो पर भी लगी थी, इनका अपना बनाया बस है ही मनगढ़ंत कहानियां। फिर भी उस अनुसार वो उस नाणे के लिए सबसे पहले नागा पहुंच गए हर की पैड़ी के ऊपर, पीछे तागे वैष्णु जो विष्णु जी के उपासक सतोगुण के। अब उन्होंने कहा कि नागाओ तुम बाद में स्नान करना, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम भगवान विष्णु के उपासक हैं और हम पहले स्नान करेंगे, हम प्रथम स्नान करेंगे। नागाओं ने कहा कि नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम वस्त्र तक नहीं रखते, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सबसे पहले स्नान करेंगे। वैष्णु साधुओं ने कहा कि तुम पशु की तरह नंगे फिरते हो, टट्टी के हाथ भी ना धोते, शरड़ फरड़ो और राख लपेट रखी, तुम कहे कि शुद्ध हो, उत्तम हो, बाहर निकलो, हम प्रथम नाएंगे। अब इतनी अकल थी लोगों में, गंगा का पानी मैला हुआ था, दो मिनट पास नहा लेते वो नहा ले जबकि बिजली गिर थी, वह पर भी खत्म हुआ थी दो मिनट में। पर वो नाना नूना भी भूल गए, भगवान की हर की पैड़ी में भी प्यार नहीं, भगवान का भी डर रहा नहीं, आपस में लड़न लायक गए, कतलेआम कर दिया। 25,000 वह त्रिगुण उपासक वह कट का मर गए, कतलेआम कर दिया। सूक्ष्म वेद में कहा है तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदा हुए हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाने वाजा तेग चलावे हैं, काटे शीश नहीं दिल करुणा ये जग में साधक वावे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। हाय हाय कहते हैं हर पैड़ी हर हेत न जाने, और वहां कर्द ठोके एक दूसरे ने कतलेआम करें, और कट्टे शीश नहीं दिल करुणा, इनमें दया नहीं राक्षसों में, और ये जग में साधकवा में तुम इनको संत भी कहते हो, और इनका जो अनुयायी बनता है उनको भी यो ये पाठ पढ़ावे हैं, यानी उनको भी नरक में ठोक देते हैं। अपने आत्माओं ये है श्रीमद भगवद गीता जी का सार। अब गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है कि मेरी साधना चार प्रकार के करते हैं, ये ब्रह्म कहता है। ब्रह्म की साधना भी चार प्रकार के करते हैं, जिनमें अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी तो जो धन लाभ के लिए कोई अनुष्ठान करता है तो वेद मंत्रों से ही करता, वो जय गणेश देवा माता धारी पार्वती ये इस तरह की आरती नहीं करता। वो व्यक्ति केवल वेदों के ही मंत्रों से अनुष्ठान करता है अपने धन लाभ के लिए, आर्त मानी संकट निवारण के लिए भी कोई साधना अनुष्ठान करता है वेदों के मंत्रों से ही करता है, वो ब्रह्म अपने आप को ब्रह्म का पुजारी कहता है जो हवन हवन करते रहते हैं। और तीसरा जिज्ञासु, जिज्ञासु वो होता जो भगवान के लिए निकलता है, ज्ञान ग्रहण करता करता स्वयं वक्ता बन जाता है, वो भी अपना जीवन नाश कर लेता है। और चौथा बताया ज्ञानी, ज्ञानी उसको कहते हैं जिसको ये पता हुआ कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा और मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य केवल आत्म कल्याण कराना है, और जन्म मृत्यु जब तक नहीं समाप्त होगी, जरा मरण का रोग नहीं कटेगा, तो कोई फायदा नहीं इस जीवन का। उनको ये भी ज्ञान हो जाता है कि पूर्ण मोक्ष इन देवी देवताओं की पूजा से नहीं होगा, वो ज्ञानी कहलाते हैं, वो परमेश्वर से, परम अक्षर ब्रह्म से, पूर्ण परमात्मा से ही संभव है, इतना उनको ज्ञान हो जाता है। लेकिन ये ज्ञान तो हो गया, लेकिन उस रोग का नाश की दवाई उनके पास थी नहीं। ये तो उनको पता लग गया कि देवताओं से मोक्ष नहीं होगा, लेकिन होगा पूर्ण ब्रह्म से। उन्होंने गलती से आप निष्कर्ष करके यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में देख लिया, ओम कर्तु समर कल्बे समर कर्तुम समर वायु अनिलम अथितम भस्मांतम शरीरम, जैसे गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में आपको दिखाया था, यही जो का तू वही मंत्र का सारांश है कि अंतिम सांस तक ओम नाम का जाप करते हैं जो शरीर छोड़कर जाता, उसका अमृतम उस ओम से होने वाली जो परम गति है वो प्राप्त होती है। इसलिए ओम कर्तु समर, ओम नाम का जाप काम करते करते श्रवण करो, विशेष कसक के साथ श्रवण करो, और मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर ओम का श्रवण करो। ये तो है ओम की जानकारी। लेकिन कहते हैं गुरु बिन का हुन पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन भेद पढ़े जो प्राणी, समझन सौर रहे अज्ञानी। 40वें अध्याय यजुर्वेद के 10वें मंत्र में कहा है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है, संभवात माने उत्पन्न होने वाला राम और कृष्ण रूप में, यानी अवतार धारता है। कोई कहता वो असंभवात, वो कभी जन्म नहीं लेता, जन्मा है वो तो निराकार है। वो परमात्मा कैसा है उसकी जानकारी धीराणाम तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। वेद ज्ञानदाता भी वही है, गीता ज्ञानदाता भी वही है। अब 40वें अध्याय के 15वें श्लोक में तो अपनी साधना बता दी, और 40वें अध्याय के 17वां श्लोक अंतिम श्लोक है यजुर्वेद का और 40वें अध्याय का, उसमें कहा है कि वो पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है। ये देखिएगा, यजुर्वेद देखिएगा, और ये अनुवाद भी देखो, कमाल की बात। इस महर्षि दयानंद जी के द्वारा किया गया है, हाय हाय। प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। यजुर्वेद महर्षि दयानंद ने इसका अनुवाद किया, और ये कहां से छपा यहां से देखिएगा। अब इसका हम अंतिम 40वां अध्याय है, इसका थोड़ा सा हिंट देंगे 10वें श्लोक का। ये 4400 अध्याय माने 40वां अध्याय यजुर्वेद का, और यहां देखिएगा 10वां मंत्र है इसका। इसमें लिखा है, हे मनुष्यो, जैसे हम लोग धीराणाम माने मेधावी योगी विद्वान यानी तत्वदर्शी संतों से जो वचन सुनते हैं, जो वे लोग हमारे प्रति विचक्षण माने विस्तार पूर्वक कहते हैं, वे लोग संभवात संयोग जन्य असंभवात उत्पन्न नहीं होने, इसका अर्थ यह है यात एवं कार्य का फल आहु माने कहते हैं उत्पन्न होने वाला, अन्यात यानी अन्य कुछ आहु माने कहते हैं, इस बात को तुम भी सुनो। अब ये क्या बताना चाह रहा है, ये अनुवाद से न करना नहीं आया क्योंकि अज्ञानी था, कति एक नंबर का, मैं ऋषि दयानंद को आया। इसका अर्थ है वेद ज्ञानदाता कहता है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है जन्म लेने वाला, और को असंभवात, देखो असंभवात माने उत्पन्न नहीं होता, असंभवात जन्म लेने वाला, इसका अर्थ यह है। तो जो धीराणाम तत्वदर्शी संत जो बताते उनसे सुनो, इनसे नहीं, इनकी बात मत मानो। वो तत्वदर्शी संत बताएंगे परमात्मा कैसा है, वो जन्म लेता है या नहीं लेता है। आगे वेद ज्ञान दाता अपनी बताता है कि मेरा ओम नाम है, 15वां अध्याय, इसमें है वायु अनिलम अमृतम अथितम भस्मांतम शरीरम, भस्मांतम शरीरम, ओम कर्तो समर किलवे समर और कर्तुम समर। इसने तो ज्ञान इनके में करना आया था ही नहीं, देखिएगा। कर्तो माने काम करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय ओम इस नाम वाच्य ईश्वर को स्मरण कर। इन्होंने लिखा ओम का स्मरण कर, इस जिसका ओम नाम है ना उसका स्मरण कर, जबकि इसका सीधा अर्थ बनता है ओम कर्तो समर, ओम नाम का जाप काम करते करते स्मरण कर, विशेष कसक यानी श्रद्धा के साथ स्मरण कर, और मनुष्य का मूल कर्तव्य जानकर इसका स्मरण कर। जब वायु अनिलम भस्मांतम शरीरम, ये आपका जीव आपका प्राण इससे अमृतो प्राप्त करेगा, अमृतम अमृतम अविनाशी, शरीर के नष्ट होने पर भस्मांतम शरीरम, जब शरीर तेरा भस्म होगा, भस्मांतम अंत में भस्म होने वाला होता है, बस इसका अर्थ नहीं करना है इसने। इसका अर्थ है कि जब यह शरीर तेरा नष्ट होगा, शरीर छोड़कर जाएगा, उस समय इतना अमृतो प्राप्त हो जाएगा जो ओम नाम से मिलता है,